اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کل ہم نے پیج نمبر 236 تک پڑھ لیا تھا، 336 ساری، تو آج اسی بات کی کنٹینیویشن ہے کہ ایک اطلاع ہے جس کو ہمارا ذہن یا سمیٹ کر سمجھتا ہے، تو اس کو ادراک کا سمٹنا کہتے ہیں. جب وہ پھیلا کے سمجھتا ہے تو اس کو ادراک کا پھیلنا کہتے ہیں. اور اس کی وہ مثال ہیروشیما کی پہاڑیاں بھی دیں. تو سارا کھیل اطلاع کا ہے. ہم اطلاع کو پھیلا کے دیکھتے ہیں تو ادراک کا پھیلنا ہوا، ہم اطلاع کو سمیٹ لیتے ہیں اور سمیٹ کر اپنے ذہن میں سجا لیتے ہیں تو وہ ہمارے علم کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ہمارا ادراک کہلاتا ہے. ساری کھیل اتنی سی ہے. اطلاعات کا ایک نظام ہے، وہ ایک ذہن ہے، بہت بڑا مائکرو مطلب ایک سپر ڈوپر قسم کا کمپیوٹر ہے جہاں سے سارے اپنے ذیلی کمپیوٹرز کو اطلاعات نشر ہو رہی ہیں، اور سارا وائرلیس سسٹم ہے. اس میں سگنل ڈپ نہیں کرتے، وہ انسٹرومنٹ ریسیونگ اپریٹس جو ہوتا ہے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کو ٹیون کرنے کا کھیل ہے. اگر اس کو ٹیون کر لیا تو سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. تو شروع کرتے ہیں جی، آغاز کرتے ہیں. 336 صفحہ ہے، چیپٹر نمبر 39 ہے. اس کا ذیلی عنوان ہے روشنی غیر متواتر. اب لفظ دیکھیں، روشنی اور پھر وہ غیر متواتر کیسے. روشنی کا تو فلو ڈائریکٹ چل رہا ہوتا ہے، وہ تو متواتر لگاتار فلو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ عنوان دیکھیں کیسا شعور کو ایک جھٹکا دیتا ہے کہ روشنی غیر متواتر. ہر فرد اپنے بارے میں یہ جانتا ہے کہ میں ہوں. ہر فرد اپنے بارے میں یہ جانتا ہے کہ میں ہوں. جب کوئی فرد یہ جان لیتا ہے کہ میں ہوں تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. جب ذہن میں میں کیا ہوں کا سوال ابھرتا ہے تو یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. اب میں ہوں کا تعلق علم سے ہے. اب میں ہوں کس طرح معلوم ہوا کہ میں ہوں؟ سوال کا جواب دیا اور پھر سوال ایک اور اٹھا دیا. یہ ہے غور و فکر. سوال ذہن میں آنا غور و فکر ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ غور و فکر کی صلاحیت کو ابھارنے کی ضرورت ہے. ہمارے نظام فکر میں، ہمارے نظام تعلیم میں سوال پوچھنا ممنوع. ٹیچرز برا مناتے ہیں، لیکن جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ سوال پوچھے جانے پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور کتنا ہی لا یعنی سوال کیوں نہ ہو، وہ اپنے نور بصار فراست سے، نور فراست اور بصیرت سے اس کو ایسے فیروزاں کر دیتے ہیں کہ وہ بندے کا ذہن جگمگا اٹھتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ سوال دیکھیں کیا کتنا معمولی سا ہے کہ میں ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. تو اگلا سوال، میں نے کہاں جانا ہے. تو ان سوالوں کے جواب، اور وہ بھی شافی اور کافی قسم کے ہونے چاہیے. اب میں ہوں کا تعلق علم سے ہے. اب میں ہوں کس طرح معلوم ہوا کہ میں ہوں؟ دیکھیں سوال پہ سوال ہے. یعنی میں ہوں کا تعلق علم سے ہے، تو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ میں ہوں؟ ظاہر ہے کہ انسان کی ذات جو ہے اس کا ایک تشخص ہے اور اس کی اپنی انفرادی حیثیت, اور یہ سب کا سب علم ہے. ذات کا تشخص اور انفرادی حیثیت, یہ سارا ہم پیچھے پڑھائے کہ یہ سب علم ہے. تو یہ معلوم کیسے ہوا؟ اس علم کی بدولت سے جو ہمیں کائناتی سطح سے اتر کر نوئی سطح پہ آیا اور بکھر گیا, اور پھر نو کے اندر وہ افراد میں تقسیم ہوا. اس علم کا شاخصانہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا تشخص حاصل ہوا اور ہمیں اپنی انفرادی حیثیت کا علم حاصل ہوا. اب اس میں کہ میں ہوں, دو لفظ ہیں, اس میں میں کی حیثیت علیم کی ہے. علیم میں نے علم رکھنے والا, لیکن صرف علم رکھنے والا نہیں, کیونکہ علم رکھنے والے کو تو عالم کہتے ہیں. اب عربی قاعدے میں جب یہ عالم کے بجائے اس کو علیم بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا علم رکھنے والا جو علم کا استعمال بھی جانتا ہے, استعمال بھی جانتا ہے اور اس کو برتتا بھی ہے. تو علیم کا اصل مفہوم ہے علم رکھنے والا, اور علم کو ایسا رکھنا جس میں اس کے برتنے کا ڈھنگ بھی آتا ہو. اب میں کی حیثیت جو ہے وہ علیم کی ہے, یعنی اور ہوں میں, ہوں دو لفظ ہیں نا, میں یہ علیم ہو گیا, یہ میں جانتی ہے کہ میں ہوں, یہ ہوں جو ہے یہ علم ہے. اب بندہ جب اپنی انفرادیت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے میں ایک طرف علم ہوں اور دوسری طرف علیم ہوں. اب یہ علیم کون ہے اور یہ صفت کیسے وجود میں آئی؟ یہ علیم نے اپنی صفت کا مظاہرہ کس طرح کیا؟ اب علیم نے اپنی صفت علم کا مظاہرہ کس طرح کیا؟ یہ کتنا بڑا سوال ہے. پوری کائناتی نظام کو سمجھنے کے لیے اس کی حیثیت چونکہ الف کی ہے, واپس پوری کتاب گھوم کے واپس اسی نقطے پہ آ گئی کہ ایک ذات ہے اور اس کی ایک صفت ہے علیم ہونا. اس ذات نے اپنی صفت علیم کا مظاہرہ کرنے کے لیے کائنات کو وجود بخشا. اب علم کیا ہے؟ علیم جو ہے وہ علم کی وجہ سے, تو علم کیا ہے؟ علم اطلاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. علم اطلاع کو کہتے ہیں. آپ کو اطلاع ہے, آپ کہتے ہیں میں عالم ہوں. آپ کے پاس ایک اطلاعات کا مجموعہ ہے. دیکھیں نا, ڈاکٹر نے 5 سال لگا کے پوری فارماکوپیا اور پوری اناٹومی اور فیزیالوجی اور ہائیجین اور یہ سارے نام حفظ یاد کر لیے. کیا ہوا؟ یہ سب اطلاعات ہیں. اب ایک وکیل نے قانونی اصطلاحات جو ہیں وہ ازبر کر لی. ایک ماہر معاشیات وہ اس لیے ماہر ہے کہ اس نے معاشیات سے ریلیٹڈ تمام اصطلاحات ازبر کر لی. تو علم اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور انسان بحیثیت علیم, اب انسان کی دو حیثیتیں, ایک وہ علیم کی حیثیت رکھتا ہے, دوسری طرف وہ خود علم ہے, کیونکہ اس کا ایک تشخص جو ہے, اس کی صفات جو ہیں وہ ہر صفت اپنی جگہ ایک علم ہے. تو انسان بحیثیت علیم اور بحیثیت علم دو رخوں سے مرکب ہے. یہ فرق ہے کہ یہ دو رخ ہیں, اس کے دو رخوں سے مرکب ہونا اس کو مخلوق بنا رہا ہے. اب علم ہو یا علیم, علم کا تعلق بھی اور علیم کا تعلق بھی اطلاع سے ہے. اور یہ اطلاع کہ میں ہوں کہاں سے آئی؟ اب یوں سمجھیے कि इंसान एक इतलाती इदराक है, इंसान एक ऐसा इदराक है जो इतलात को कबूल कर रहा है, वसूल कर रहा है, उनको समझ रहा है, या एक ऐसा इदराक है जो इतलात नशर कर रहा है। यहां पे इस जुमले को इजाफी तौर पे अर्ज कर देता हूं कि ये लफ्ज जो कुरान में हशर और नशर है, हशर कहते हैं जमा करने को और नशर कहते हैं रिले करने को। तो यहां ये जो लफ्ज आया कि इंसान एक इतलाती इदराक है, इसमें दोनों कैफियतें, हशर वाली भी और नशर वाली भी। एक तरफ ये इदराक इतलात को जमा करता है और दूसरी तरफ इतलात को नशर करता है। ऐसा इदराक जिसकी बुनियाद इतला पर कायम है। इतला के अंदर मानी पहनाए जाते हैं, एक तरफ इतला में मानी नहीं होते और दूसरी तरफ इतला में मानी पहनाए जाते हैं। अब ये मानी पहनाने का अमल जहन करता है और इनफरादी दर्जे पे ज्यादा करता है। तो इत्तला के अंदर जब तवालत पैदा होती है तो वक्फा पैदा हो जाता है। इत्तला के अंदर जब तवालत पैदा होती है, लहर है ना, इत्तला एक लहर है। अब लहर में जब वेव में लेंथ पैदा होती है तो वेव लेंथ बनी। इसको अंग्रेजी की इस्तलाह इसलिए इस्तेमाल करने की जसारत मैंने की क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि एक वेव जब बनती है, एक सीधी लाइन चलते हुए जब वो वेव बनती है तो उसमें वेव लेंथ पैदा हो जाती है। इस चीज को हम तवालत कह रहे हैं। तो इत्तला के अंदर जब तवालत होती है तो वक्फा पैदा हो जाता है, यानी ये वेवलेंथ जब डिप करती है और राइज करती है तो उसका ये वार्फ बनता है और वेस्ट बनता है। ये जो उसका निचला डिप है और फिर जो ऊपर का मैक्सिमम क्लाइमैक्सिंग है, ये एक लूप बनता है। लूप, ये जो लूप बनना है ये वक्फा है। और जब तवालत नहीं होती तो वक्फा कम से कम हो जाता है या इतना कम हो जाता है कि वक्फा नहीं रहता। अब इत्तला में इदराक की तवालत एक सेकंड से ज्यादा नहीं है। इत्तला में इदराक की तवालत, इदराक को जब हम समझते हैं तो वो एक सेकंड में समझ आता है या एक सेकंड है। लेकिन यही तवालत जो एक सेकंड से ज्यादा नहीं है, खरबों साल पर मुहित हो जाती है। यानी इदराक खुद एक सेकंड पे मुहित है या एक सेकंड उसकी तवालत है, लेकिन मुहित वो खरबों साल पे हो जाता है या हावी हो जाता है या खरबों साल को अपने हाथे में ले लेता है। जब हम खरबों साल का तस्करा करते हैं तो खरबों साल का वक्फा एक सेकंड से ज्यादा नहीं होता। यानी जब हम कहते हैं ना, अब मैंने कहा खरबों साल तो कितनी देर लगी आपको सुनने में, कितनी देर लगी, एक सानिया यानी एक सेकंड। इंसान एक इत्तला है, क्योंकि इंसान बजाते खुद एक इत्तला है इसलिए उसकी सारी जिंदगी इत्तला है। जज्बात और एहसासात और हवास, ये तीन चीजें, जज्बात हों, एहसासात हों या हवास हों। हवास वो जो महसूसात बनाते हैं या वसूल करते हैं इत्तलात को, इन सब का ताल्लुक इत्तला पर है। इत्तला है तो हवास हैं, इत्तला नहीं है तो हवास नहीं है। अब इत्तला क्या है? इतनी बात समझ आ गई कि इल्म क्या है? इत्तला। इल्म क्या है? इत्तला। इत्तला को वसूल करना इल्म कहला रहा है, और जो वसूल कर रहा है वो अलीम कहला रहा है। अब ये इत्तला क्या चीज है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया गॉड सेड लाइट एंड देयर वाज लाइट, यानी खुदा ने कहा कि रोशनी और रोशनी हो गई। अब इसी बात को कुरान ने कुन फयकून कहकर बयान किया, यानी अल्लाह ताला ने कहा हो जा और वो हो गया। अब जब हम अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह को रोशनी के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते। जब रोशनी ने अपने किसी प्रोग्राम को नशर करना चाहा, क्या करना चाहा? रोशनी क्या करती है? नशर। नशर करना चाहा तो इस प्रोग्राम को जो रोशनी के जहन में महफूज है, प्रोग्राम जो रोशनी के जहन में महफूज है, अल्लाह नूरु समावात, यानी रोशनी के जहन, रोशनी का एक जहन है। अब क्योंकि अल्लाह को रोशनी का अल्लाह के जहन में जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को जिसको रोशनी के जहन में महफूज प्रोग्राम कहा गया, हुक्म दिया, हुक्म के बाद जहन के अंदर मौजूद प्रोग्राम का मुजाहरा इस तरह हुआ कि रोशनी ने कहा रोशनी और रोशनी हो गई। भाई अल्लाह भी रोशनी, अल्लाह ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई, इसलिए कि रोशनी के जहन में जो कुछ है वो सब रोशनी है। इक्वेशन ये बनी कि सारी कायनात एक रोशनी है और एक रोशनी के जहन का अक्स है। इक्वेशन ये बनी कि सारी कायनात एक रोशनी के जहन का अक्स है। चूंकि सारा प्रोग्राम रोशनी के जहन से मुंतकिल हुआ, इसलिए प्रोग्राम का हर जुज़, हर किरदार रोशनी के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर, यानी ब्रैकेट में लिख दिया रोशनी है। कायनात में मौजूद हर शय रोशनी है। अब जरा गौर करें, कायनात में मौजूद हर शय रोशनी है, यानी मेरी आवाज भी रोशनी है, आपकी समाज भी रोशनी है, मेरा देखना भी रोशनी है, जो दिख रहा है वो भी रोशनी है। हर चीज, हर शय रोशनी है, हमारी बसारत भी रोशनी है, समात भी रोशनी है, फहमो फिरासत की सलाहियत भी रोशनी है। जिस माहौल में हम जिंदा हैं, इस माहौल में तमाम चीजें रोशनी हैं। जब ये साबित हो गया कि कायनात का हर छोटे से छोटा जुज और बड़े से बड़ा जुज रोशनी है, तो किताब और किताब के अल्फाज भी तो रोशनी ही हैं। क्योंकि किताब भी रोशनी है, अल्फाज भी रोशनी हैं, इसलिए हमारी नजर भी रोशनी है। रोशनी को रोशनी पढ़ती है और रोशनी को रोशनी देखती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो रोशनी पढ़ते हैं और रोशनी समझते हैं, यानी हम रोशनी को समझ रहे हैं। आप गौर करें कि ये लफ्ज रोशनी से रोशनाई बनता है, यानी स्याही को कहते हैं वो रोशनाई। तो रोशनी ये जो स्याह अल्फाज हैं ये भी रोशनी हैं, मुर्शिद करीम के जहन से निकला हुआ हर ख्याल रोशनी है, हमारा जहन भी रोशनी है। सिर्फ इतना करना है कि हमने अपने जहन को उस रोशनी के को समेटने का अहल बनाना है। अब ये रोशनी क्या है? रोशनी एक इत्तला है, यही यानी रोशनी और इत्तला एक ही चीज है। क्लियर हो गया कि इत्तला क्या है? इत्तला असल में रोशनी को कहते हैं, और रोशनी की आगे किस्में हैं, यानी रोशनी और इत्तला एक ही चीज है। अब दोबारा बात असर नौ खाका दोबारा वाजे किया जाने लगा है। इंसान अपनी हिफाजत के लिए एक लिबास बनाता है, वो लिबास सूती कपड़े का हो, ऊनी कपड़े का हो या खाल का होता है। जब तक लिबास गोश्त पोस्त के जिस्म पर है, लिबास में हरकत है। जब जिस्म पर से लिबास उतार दिया जाता है तो लिबास में हरकत नहीं रहती। लिबास भी रोशनी है, लेकिन इस लिबास की सतह पे इस रोशनी का नाम नस्मा है। अब साइंस इस मरहले पर पहुंच गई है कि इंसान और इंसान के अलावा जितने भी अफराद हैं, यानी ये साइंस ने जान लिया है कि इंसान और इंसान के अलावा जितने भी अफराद हैं, नौए हैं, उनमें आगे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ये सब रोशनियों के खौल में कैद हैं। यानी रोशनियों का एक खौल बनता है, एक खिला बन जाता है रोशनियों के अंदर, उस खिला की शक्लें बन जाती हैं और वो अफराद कहलाते हैं या नौए कहलाती हैं। रोशनी जो खुद रोशनी है, दूसरी तरफ रोशनी अपनी खुदी को जाहिर करने के लिए रोशनी दिखाती है। अब इस जुमले की जितनी भी आप दाद दें कम है। दाद देने से मुराद है इसको समझें, रोशनी अपनी खुदी को जाहिर करने के लिए रोशनी दिखाती है। रोशनी खुद को दिखाने के लिए रोशनी दिखा रही है। मकसद ये है कि कायनात में जितनी चीजें मौजूद हैं ये रोशनी है। रोशनी मुजाहरा करने के लिए लिबास बनाती है। जब तक रोशनी जिस्म से रिश्ता कायम रखती है, ये जिस्म का लिबास कायम रहता है। जब रोशनी लिबास से रिश्ता तोड़ लेती है तो लिबास बिखर जाता है। रोशनी की हरकत मसलसल और मतवातर है। रोशनी किसी लम्हे चैन से नहीं बैठती, इसलिए हर लम्हा हर आन नया रूप नया लिबास बनाकर मुजाहरा करती है। रोशनी बताती है कि मैं हूं, और मैं हूं इत्तला के अलावा कुछ नहीं, और इत्तला खुद रोशनी है। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने इस चैप्टर में एक मिसाल दी है, हजूर मुर्शिद करीम ने उसका तस्करा नहीं किया, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करा दूं। आप गौर करें कि ये इत्तला का फैलना और सिमटना किस तरह से ये रोशनी के जेल में हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप एक सितारे को देख रहे हैं, सितारे को देखना एक इत्तला है। अब ये सितारा जो देख रहे हैं, हमारे साइंसदान हमें बताते हैं कि ये 4 लाख साल लाइट ईयर्स, 4 लाख रोशनी के सालों की मुसाफत पर है। यानी जितने अरसे में रोशनी जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वो वहां से चली थी 4 लाख साल पहले या 1 करोड़ साल पहले। ठीक है, कायनात में ऐसे ऐसे सितारे भी जो करोड़ों साल की मुसाफत पे हैं रोशनी की। अब आप गौर करें कि जिस लम्हे में सितारे को देख रहा हूं, अगर इसकी उम्र 4 लाख साल, मतलब कि लम्हा जो है जिसमें मैं सितारा देख रहा हूं, तो ये रोशनी वहां से 4 लाख साल पहले निकली थी। मैं इसे लम्हा हाजर में देख रहा हूं, तो गोया मैं 4 लाख साल पुराना या 1 करोड़ साल पुराना लम्हा, उसकी रोशनी को इस लम्हे में देख रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि एक जब हम सितारे को देखते हैं, जो फर्ज करें कि वो 1 लाख साल रोशनी की, 1 लाख साल लाइट ईयर्स की मुसाफत पर है, तो मैं इस लम्हे उसको देख रहा हूं, तो ये लम्हा लाख साल पहले का लम्हा है या इस लम्हे में वो 1 लाख साल पहले की रोशनी है, हाँ या नहीं? यानी के हमारे इदराक ने फैल कर 1 लाख साल या 4 लाख साल या 1 करोड़ साल पहले की रोशनी का अहाता कर लिया। ये है सारा निजाम जिसको सीखना, रूहानी सालक की मंजिल होता है। बात मुख्तसर तरीन अल्फाज में हजूर मुर्शिद करीम ने सम अप कर दी कि रोशनी है और रोशनी ही रोशनी को समझ रही है, जो समझ रहा है वो भी रोशनी है, जिसको समझना है वो भी रोशनी है। बाकी सारा निजाम आपके जहन का है, इत्तलात का है। देखें इस चैप्टर में आप गौर करें, सारी इस्तलाहात से गुजर कर खलासा कलाम क्या बयान हुआ। अल्लाह नूर समावात वाला, अल्लाह तो जमीन और आसमानों की रोशनी है और ये रोशनी ही अपना डिस्प्ले कर रही है, वो अपनी खुदी को बयां करने के लिए मुजाहरा कर रही है या अपनी खुदी दिखा रही है, यानी जो वो खुद है वो दूसरों को अपना आप दिखाने के लिए मुजाहराती शक्ल इख्तियार करती है और खुद ही देख के खुश हो रही है। वो अलग बात है कि हमारी सूरत में वो देख के खुश कम होती है, रोती ज्यादा है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। ये चैप्टर मुकम्मल हो गया, कल हम इंशाल्लाह इसका आखिरी चैप्टर मुतालिया करेंगे इंशाल्लाह। आप सबका मैं इंतहाई शुक्र गुजार हूँ, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। आपने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे ये सादत बख्शी कि मेरे ये लिए एक एजाज से कम नहीं है कि मैं हजूर मुर्शिद करीम की तहरीर को पढ़ता चला गया और आपने समात बख्शी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे जी। के गुड केयर की। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नहीं खैर, ऐसा भी कुछ नहीं ऐसा लंबी तान के भी सोता हूँ। हाँ ये है कि नींद के वक्फे कम होते हैं, जागने के कुछ जरा ज्यादा हो जाते हैं। कभी ज्यादा देर जाग लेता हूँ तो फिर सो भी ज्यादा देर जाता हूँ।
तो
दिस इज हाउ थिंग्स आर, क्योंकि अल्लाह मियां ने एक इक्वेशन रखी हुई है, तो वो बस कभी हम इधर ज्यादती करते हैं जागने में तो फिर सोने में भी हो जाती है। कार्लाजस में लेते हैं।